धवला पुस्तक 15वी लेक्चर नंबर 13 ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर ओम श्रुतात्मने नमः प्रणमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सौमसाम मुनिय परमर्थ विठ्ठल मुनिवर वीरैः सिद्धविजयिनः जासन्तु वयवदीः पश्यौ स्वयदेवया मध्यम् सुसुदेवयाय भक्ति सुदो वजोगो वभावियो सम्मम् आवहैनाणसिद्धिम् प्राणफलम् चाविनिर्वाणम् तो सुवदेवयमिणमो तिक्खुत्तोपणमियूणभक्ति गोच्छामि जनासुत्तम् चारित्रमोहसखवणरिहिम्। यह श्री भीषणाचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतीशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 15वीं पुस्तक में जो चारित्र मोक्ष अपना का अर्थाधिकार चल रहा है अपना, उसमें हम पृष्ठ संख्या 98 पर आ गए। 98 यहाँ ये बात हो रही थी कि काल की अपेक्षा बात चली। तीसरी मूल गाथा में तीन विषय बताए थे कि प्रदेश आग्रह की अपेक्षा, अनुभाग की अपेक्षा और काल की अपेक्षा। तो यहाँ जो काल यहाँ बता रहे हैं, एक कृष्टि संबंधी काल की बात चल रही है और वो भी कृष्टियों के वेदक जब चालू हो जाता है, कृष्टि वेदक का पहला समय, क्रोध के कृष्टि वेदक के पहले समय में मोहनी की स्थिति कितनी है तो 8 वर्ष, मान के पहले समय में 4 वर्ष, माया के पहले समय में 2 और लोक के पहले समय में 1 वर्ष। अलग अलग कषायों से चढ़ने वालों की अलग अलग यहाँ बताई है बातें, उसकी हमने विस्तार से देखी थी। अब यहाँ हम आगे बढ़ते 98 पर आए हैं। आवाज आ रही है? हाँ। अब यहाँ हम आए हैं, ये जो दूसरी भाष्य गाथा हमने पढ़ी थी, ये 259 नंबर का पॉइंट 98 पृष्ठ पर तीसरी लाइन, वहां पर हमने ये क्या बात देखी थी कल, किसी भी कषाय से क्यों न चढ़े, उसका पहला जो समय है वो तो सबके लिए एक ही है, यानी क्रोध से चढ़ने वाले के क्रोध का भी है, मान का भी, माया का भी और लोक का। मान से चढ़ने वाले के क्रोध का उदय है ही नहीं है, परंतु उसका मान का जो पहला समय है वो क्रोध से ही चढ़ने वाले के मान के पहले समय के समान बराबर है। उसी समय में दोनों का होगा, जिस समय क्रोध से चढ़ने वाले के मान के कृष्टि का उदय का पहला समय है, उसी समय मान के उदय से चढ़ने वाले के मान के कृष्टि का पहला समय का होगा, वेदक काल कृष्टि वेदक का पहला समय। अभी क्रोध और मान से चढ़ने वालों के लिए माया का जो पहले समय का, जिस पॉइंट पर पहला समय आता है उसका कृष्टि वेदन का, शुरू से ही माया से चढ़ने वाले का भी उसी समय होगा, उसमें कोई अंतर नहीं। अंतर क्या होगा, उसके क्रोध और मान का तो उदय ही नहीं होगा, डायरेक्ट माया का उदय तो चल रहा है, पर यहाँ कृष्टि के उदय की बात चल रही है। ऐसे क्रोध मान और माया वाले जीव, उससे उदय से चढ़ने वाले, जिस समय उनके लोभ कृष्टि का पहला समय होगा वेदन का, उसी समय डायरेक्ट लोक के ही उदय से चढ़ने वाले के लोक के कृष्टि वेदक का पहला समय उसी पॉइंट पर, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये बात हमने कल विस्तार से देखी थी। अब यहाँ पर देख रहे हैं, तीसरी लाइन पर हम, वहां पर स्थिति सत्कर्म के प्रमाण का, वहां पर इन्हें पॉइंट बता दिया कृष्टि वेदन का पहला समय एक एक कषाय का, इसलिए कहा उस समय स्थिति सत्कर्म कितना है, सत्ता में जो स्थिति है कर्मों की वो कितनी है, तो उसके प्रमाण का सूत्र में कहे गए के अनुसार इस प्रकार अवधारण करना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में पूरे एक वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म को छोड़कर, ये एक वर्ष प्रमाण किसकी बात है, लोभ अन्य प्रकार संभव नहीं है। इस प्रकार प्रथम भाष्य गाथा की अर्थ विभाषा समाप्त हुई। इसमें कितनी भाष्य गाथाएं हैं, छह है। अब दूसरी भाष्य गाथा की अर्थ विभाषा करते हुए उसकी समुत्कीर्तना करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। अब गाथा भी बताएंगे और उसकी विभाषा भी करेंगे। एतो विद्याय भासगाहाय समुत्कीर्तना, यह दूसरी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना है। यह सूत्र सुगम है। अब ये समुत्कीर्तन ने गाथा बता रहे हैं। जम कीर्तिम वेदय दे जब मच्छम सांतरम दुसुष्टि दिशु परमाजम गुण सेरी उत्तर सेरी अविदियादु। यह क्षपक जीव जिस पृष्टि का वेदन करता है, देखा ना कंटिन्यूस क्रोध में प्रथम पृष्टि का वेदन, फिर दूसरी, फिर तीसरी चक्कर रहेगा, फिर मान माए अमन लोक कंटिन्यूस। तो जिस पृष्टि का वेदन करता है उसका सांतर यव मध्य सहित दोनों स्थितियों में अवस्थान होता है। यानी ये जो जिस पृष्टि का वेदन चल रहा है, यानी प्रथम पृष्टि का वेदन करेगा, तो प्रथम पृष्टि कहाँ पाई जाती है, प्रथम स्थिति में भी और द्वितीय स्थिति में भी, दोनों जगह हमने देखा ना। पुष्टि करते उस अनुभाग वाले परमाणु कहाँ हो गए, द्वितीय स्थिति में भी पड़े प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति में इसलिए कि अभी नई रचना हुई उसकी, और द्वितीय स्थिति में बने थे तो सबके सब नीचे तो नहीं आए अभी, तो ऊपर भी है नीचे भी। और क्या कहते, दोनों स्थितियों में अवस्थान होता है, उनमें से जो प्रथम स्थिति है वह गुणश्रेणी रूप है। पूरी प्रथम स्थिति गुणश्रेणी रूप से ही है, क्योंकि प्रथम स्थिति कितनी बनी थी, जितना कृष्टि वेदक काल है उसमें आए कावली ज्यादा, प्रथम कृष्टि वेदक का जितना काल है उससे एक कावली प्रमाण ज्यादा इतने निषेक बने थे प्रथम स्थिति में, वो सारे के सारे उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी रूप से रचना। इसलिए कहते प्रथम स्थिति है वह गुणश्रेणी रूप है। एक गुणश्रेणी निषेकों के लिए शब्द लगाया, परंतु द्वितीय स्थिति, क्योंकि पहली स्थिति और द्वितीय स्थिति ये निषेकों की अपेक्षा ही बता रहे हैं, अनुभाग तो सर्वत्र सभी पड़ा है, परंतु द्वितीय स्थिति उत्तर श्रेणी अर्थात हीयमान श्रेणी रूप है। उत्तर श्रेणी गुणश्रेणी और उत्तर श्रेणी, यानी वो तो घटता हुआ गोपुच्छा जिसको कहेंगे, द्वितीय श्रेणी भी नहीं, हीयमान। हाँ, उत्तर श्रेणी को हीयमान श्रेणी का, उत्तर श्रेणी स्थिति नहीं कहा, उत्तर स्थिति नहीं कहा, उत्तर श्रेणी कहा। देखो पहले तो प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति बनी, तो पहले प्रथम स्थिति में किस रूप से दिया, तो गुणश्रेणी रूप से दिया अंतर्मूर्त तक, इसको ऐसा बताएंगे, बीच में तो अंतर है। और द्वितीय स्थिति में निषेक तो ऐसे सारे पड़े हैं ऊपर, जो कुछ आठ वर्ष प्रमाण जितनी स्थिति बाकी है वो किस पद्धति से है, तो नीचे से ऊपर तक गोपुच्छा घटते क्रम से। यहाँ का ऐसा था गुणित प्रमाण में, नीचे गुणश्रेणी में गुणित प्रमाण में परमाणुओं की संख्या गुणित प्रमाण में दी जाती है, और ऊपर घटते क्रम से।
इसको बोला इन्होंने
ये शांतर शांतर यो मध्य क्यों अंतर सहित यो मध्य, क्योंकि ये नीचे और ऊपर से इस तरह से ये देखी जाएगी रचना। ऊपर तो अभी लोभ के समय तो वर्ष प्रमाण है, पहले तो 8 वर्ष थी, 4 वर्ष थी, 2 वर्ष थी, इस तरह से। परंतु ये सांतर यव मध्य रचना इसको कहेंगे, अंतर सहित यव मध्य हुआ है। नीचे प्रथम स्थिति में गुणित प्रमाणी गुण श्रेणी रूप से दिया है और ऊपर घटते क्रम से दिया है, इसको यव मध्य कहा और इसी को सांतर कहा, क्योंकि बीच में अंतर है उसके। प्रथम स्थिति जो बनी है ना आयाम उसका, तो जो अभी प्रथम संग्रह कृष्टि नीचे आई है यानी उसके कुछ प्रमाण में नीचे आई है, तो उसका जितना वेदन काल है प्लस एक आवली, क्योंकि वो जो आवली प्रमाण अधिक है वो उच्चिष्ठावली रूप से रहने वाला है। उसके बाद द्वितीय स्थिति के परमाणु, सॉरी द्वितीय श्रेय इसके संग्रह कृष्टि के परमाणु आएंगे। देखो ये 134 नंबर का सूत्र जो है भाषा गाथा भाष्य गाथा, उसको फिर दोबारा पढ़ते हैं। यह क्षपक जीव जिस कृष्टि का वेदन करता है, क्योंकि जिसका वेदन करता है उसके परमाणु नीचे आते हैं, प्रथम स्थिति बनती है, उसका सांतर यव मध्य सहित, ये अंतर अंतर है वो वही यव मध्य होता है और वो यव मध्य में ही लेना, सांतर यानी अंतर सहित यो मध्यम, दोनों स्थितियों में अवस्थान होता है। नीचे की स्थिति में भी वे है पृष्ठ और ऊपर भी है, उनमें से जो प्रथम स्थिति है वह गुणश्रेणी रूप है, क्योंकि उदयादि गुणश्रेणी कहते हैं उसको, उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी। परंतु द्वितीय स्थिति उत्तर श्रेणी अर्थात हीयमान श्रेणी रूप है, घटते हुए पंक्तियां हैं वो। पहली स्थिति असंख्यात गुणा बढ़ते हुए और द्वितीय स्थिति कुछ कम, जिसको हम चय चय घटते हुए ऊपर चली जाएगी।
ये प्रथम कृष्टि की बात
है, हर कृष्टि में ऐसा ही होगा।
द्वितीय
कृष्टि नहीं,
संग्रह कृष्टि जो है वो द्वितीय और तृतीय तो ऊपर ही पड़ेगी, ये प्रथम
में ऐसा बात है। जब दूसरे का नंबर आएगा तो दूसरे में भी ऐसा ही होगा ना, तीसरे का नंबर आया तो तीसरे के भी ऐसा ही होगा। वो कहाँ पड़ी है, प्रथम स्थिति में भी है, द्वितीय स्थिति में भी है, तीसरे का नंबर आया तब तीसरे कहाँ है जब तीसरे का नंबर आएगा तो तीसरी कृष्टि कहाँ है, प्रथम स्थिति में भी है और द्वितीय में। जो तीसरे का उदय चलेगा तो प्रथम और द्वितीय का क्या होगा, हाँ वो तो नष्ट हो गया ऑलरेडी। हाँ उदयादि गलितावशेष, क्योंकि वही तो, क्योंकि इसीलिए उसने प्रथम स्थिति कितनी बनाई थी, जितना वेदक काल है उससे एक अवली ज्यादा, तो जितना वेदक काल है तब तक एक एक निशय गल के वो तो गुणश्रेणी छोटी छोटी होती चली जाएगी, प्रथम स्थिति घटती चली जाएगी और अवली शेष रहे तब जाके अन्य संग्रह कृष्टि के परमाणु आकर उसकी प्रथम स्थिति बनेगी। यानी बाय दैट टाइम जो ये कृष्टि वाले जो प्रथम संग्रह कृष्टि के परमाणु थे द्वितीय कृष्टि द्वितीय स्थिति में, वो तो संक्रमित होकर नष्ट हो जाएगी, संक्रमित हो गए ना वो द्वितीय कृष्टि रूप हो जाएगी। अब यहां देखते हैं इसको उत्तर श्रेणी कहा, यानी हीयमान घटते हुए, जिसको हम गोपुच्छा वगैरह कहते हैं। 261 पॉइंट नीचे का पैराग्राफ, कृष्टि वेदक के प्रथम और द्वितीय स्थिति में, अभी यह स्थिति की बात है, प्रदेश पुंज का अवस्थान इस श्रेणी रूप से होता है, इस बात का कथन करने के लिए यह दूसरी गाथा आई है। श्रेणी रूप यानी हर पंक्ति में किस प्रोपोर्शन में कैसे कहां पाया जाता है उसकी बात यहां बताएंगे। और इस प्रकार के अर्थ का निर्देश मूल गाथा में नहीं है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कृष्टियों के काल संबंधी प्ररूपणा के अवसर पर कृष्टियों के काल से युक्त प्रदेश कुंज की भी प्ररूपणा कर आए हैं, इसलिए उक्त कथन में कोई दोष नहीं है। अब इस दूसरी भाष्य गाथा के अवयवों के अर्थ की प्ररूपणा करेंगे, वह जैसे अवेद्यमान संग्रह कृष्टियों का, यानी जिसका उदय नहीं है उसकी बात चल रही है, द्वितीय स्थिति में ही लगाया, एक गोपुच्छा के आकार से अवस्थान होता है, यानी जो अविद्यमान संग्रह पुष्टियां है, यानी अधिक अनुभाग वाले जो परमाणु है हर निषेक में है, वो सब द्वितीय स्थिति में पड़े, वो नीचे आए नहीं है, इसलिए उनके दृश्यमान प्रदेश पुंज की श्रेणी प्ररूपणा सुगम है।
जिसका उदय पहला होता है उसका तो अनुभाग ज्यादा होता है, और पीछे कम अनुभाग वाले द्वितीय
कम अनुभाग वाले नहीं, ऐसा समझना उसका, जो पहले में वो भी दूसरी स्थिति में है कि नहीं है, तो केवल कम अनुभाग वाले ऐसा नहीं कह सकते हम। प्रथम संग्रह पुष्टि का उदय होगा, उस समय प्रथम संग्रह पुष्टि के परमाणु प्रथम स्थिति में भी है, द्वितीय में भी है, तो केवल कम है ऐसा अगर हम विधान करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो बाकी के कहा, यहाँ अवैद्यमान की बात चलिए, जो उसका जिसका उदय नहीं है वो कहाँ है, वो तो प्रथम स्थिति में है ही नहीं, कहाँ पड़े द्वितीय स्थिति में, किस रूप से, गोपुच्छा रूप से, तो उनके गोपुच्छा प्रदेश पुंज किस रूप से पड़ा है, कहीं पर भी प्रदेश पुंज जो पड़ा है दिखाई देता है वो गोपुच्छा रूप से दिखाई देता है, इसलिए उनके दृश्यमान प्रदेश पुंज की श्रेणी प्ररूपणा सुगम है, दृश्यमान यानी दिखाई देने वाले, इस कारण जिस कृष्टि का वेदन करता है उसकी प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति संभव होने से, जिसका वेदन है मात्र उसी की प्रथम स्थिति बनती है, तो उसके परमाणु प्रथम स्थिति में भी और द्वितीय स्थिति में भी है, और अवेद्यमान के मात्र द्वितीय स्थिति में है, तो अवेद्यमान के मात्र एक गोपुच्छा द्वितीय स्थिति में पड़ी है, और वेद्यमान जो जिसका उदय चल रहा है वो प्रथम स्थिति में गुणश्रेणी रूप और द्वितीय स्थिति में गोपुच्छा रूप हीन रूप, इसलिए बीच में वो मध्य आता है यव के अनाज के समान, तो उसको यव मध्य कहा, परंतु उस पोजीशन पर अंतर भी, इसलिए सांतर यव मध्य नाम दिया। देखो फिर पढ़ती हूँ, ये नीचे से पांचवी लाइन लास्ट में, इस कारण जिस कृष्टि का वेदन करता है उसकी प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति संभव होने से तद विषय प्रदेश पुंज की श्रेणी प्ररूपणा करेंगे, इस बात का ज्ञान कराने के लिए जम किट्टिम वेद यदे, ये किसकी बात चल रही है, जो कृष्टि वेद रहे हैं उसकी। मूल गाथा सूत्र का यह प्रथम अवयव कहा है, उस कृष्टि के प्रदेश पुंज का यव मध्य रूप से अवस्थान होता है, अन्य प्रकार से नहीं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए उक्त मूल गाथा सूत्र के जव मध्यम इस दूसरे अवयव का निर्देश किया है, और वह यव मध्य प्रथम और द्वितीय स्थिति में विद्यमान होकर अंतर स्थितियों से अंतरित होकर अंतर सहित होता है। क्या कहते हैं, ये यव मध्य कहाँ है, तो ये नीचे में पहले स्थिति में, ये लास्ट वाला निश्चय, और ये ऊपर वाला पहले द्वितीय स्थिति का पहला निश्चय, उसके बाद ऊपर कम है, वहां तक ये कम अधिक था, ये क्रम अधिक था, तो ये दोनों का ही ये यव मध्य है, और वो अंतर से विभाजित है, अंतर सहित है,
ये जो नीचे वाले यव मध्य का जो आखिरी है,
हाँ, दोनों निषेक बराबर नहीं, बराबर तो नहीं होंगे, शायद अधिक भी होगा वहाँ पर,
नीचे अधिक होना चाहिए।
नहीं नहीं, ऊपर के पहले में ज्यादा दिया जाएगा शायद, वही गुणकार रूप से। अभी वो बात आएगी कहाँ पर कितना परिदेश में दिया जाने वाला द्रव्य, गुण श्रेणी है, पर द्वितीय स्थिति के पहले निषेक में क्या गुणित प्रमाण में दिया है, क्या उससे कम दिया है, इसका डिसीजन तो यहाँ जब विषय आएगा तभी होगा, है ना? नीचे बनी है, परंतु अपकर्षण के करके नया द्रव्य जो दिया जाता है वो किस रूप से दिया जाता है, ये बात है। दृश्यमान द्रव्य कैसा है, कि ये जो यहाँ से उसमें एक चाहे ज्यादा है क्या, ये कम है इसमें कि कैसे है, तो कहीं कहीं वो तो खास विशेषता बताए कि दूसरे स्थिति के पहले निषेक में और उसी प्रपोर्शन में ज्यादा दिया जाता है। यहाँ क्या पोजीशन है वो बताएंगे तब पता चलेगा, क्योंकि ये इतने अलग अलग जगह अलग अलग विधान आते हैं इसके, तो हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अभी उसकी जो श्रेणी प्ररूपना करेंगे या अनंत रूप निदान उसमें शायद बताएंगे। यहाँ तो क्या बताते हैं, यव मध्य कहाँ है, पहले स्थिति का अंत में और द्वितीय स्थिति के स्टार्टिंग में, ये दोनों यव मध्य में आते हैं और उसके बीच में अंतर है। ये तो बात क्लियर हो गई। इसलिए 99 पेज सेकंड लाइन, उसके अंतर सहित पने का ज्ञान कराने के लिए सांतरम दुसुठिदिशु, इस प्रकार गाथा सूत्र के इस तीसरे अवयव का निर्देश किया। ये बात ख्याल में आ रही है, ये वो मध्य दोनों ओर लिया, प्रथम स्थिति में भी लिया, द्वितीय स्थिति में लिया और बीच में अंतर लिया, इसका भामार्थ इस प्रकार है। अभी समझा रहे, प्रथम स्थिति की सबसे पहली स्थिति में यानी नीचे की उदय रूप स्थिति, उदय रूप निषेक कहेंगे हम इसको, प्रदेश पुंज सबसे थोड़ा होकर पुनः जो क्रम है उसके अनुसार असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से प्रथम स्थिति के अंतिम समय तक बढ़कर पश्चात अंतर का उल्लंघन करके, क्या लिखा है, द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में एक बार असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से बढ़कर तत्पश्चात आगे सभी स्थितियों में विशेष हानि रूप से जाकर समाप्त होता है। ये दिखने वाले की बात है, यानी जो यहाँ गुणित प्रमाण में हुआ इसमें भी गुणित प्रमाण में हुआ, बाद में घटा। मैंने बताया ना, ये अलग अलग पोजीशन में ऐसी बातें बताते हैं, इसलिए ऊपर कम देता है या ऊपर कम दिखाई देता है ऐसा हम नहीं कहेंगे। जो जिस असंख्यात से गुणाकार करते करते प्रथम स्थिति के अंतिम निषेक पर पहुंचे थे, उसी असंख्यात से गुणा करने पर यहाँ द्वितीय स्थिति का पहला निषेक मिला और फिर वो घटते चला गया ऊपर,
मतलब असंख्यात गुणा हो गया
वो पहला निषेक, असंख्यात गुणा है नीचे से,
थोड़ा टेढ़ा हो गया।
अभी ये जो है अभी ऐसा होगा वो, पर ये बीच में कोई क्रम नहीं, इसमें इससे ये डायरेक्ट असंख्यात गुणा है, यानी एक में ही वो, क्योंकि अंतर में कुछ है ही नहीं है, तो अंतर में ऐसी लाइन तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, फिर भी इससे जितना यहाँ से असंख्यात गुना दिया उससे इससे वो असंख्यात गुना होगा, ये बात है, इसलिए उसको यव मध्य में। ये यदि यहाँ होता तो कैसे दिखता, इस तरह से इतना यहाँ अगर होता ये असंख्यात गुणित तो ऐसा दिखता, ये इस प्रकार से गुणित होता ना, उसके बदले यहाँ तक ले लिया उसको, इस तरह से लिया तो उसका वो यव मध्य कहेंगे उसको, ये यहां नहीं दिया ऊपर दिया, यानी उसके बाद घटता है ना, इसलिए वहां उसको यव मध्य में इंक्लूड कर दिया। इस कारण मिला 262 ऊपर से पांचवी लाइन नीचे से तीसरी लाइन। इस कारण दो स्थिति विशेषों में प्रदेश पुंज का अनंतर कहा गया यह यवमध्य होता है, यानी अभी अभी
यवमध्य जब हम बोलते हैं 1456 दो बार आते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 1456 मतलब कोई संख्या ले ली मैंने, वो संख्या बीती बराबर आती है। यहाँ पर वो 1456 नहीं होगी, 1464 होगा या 1480 होगा, जो भी होगा वो होगा, उसको अपन यवमध्य बोल रहे हैं।
हाँ, हम इमेजिन करेंगे ना कि वो उसी असंख्यात गुणा वो द्वितीय स्थिति में पहला निषेध है और बाद में वो घटती है, ये नीचे की नीचे घटती है ऊपर की ऊपर घटती है, इसलिए इसको यवमध्य का। अभी एग्जैक्ट उसका प्रदेश पुंज का साइज कहाँ कितना होता है वो उन्होंने नहीं लिया, यहाँ से नीचे घटती है और यहाँ ऊपर से घटती है, ये भी यवमध्य ये भी यवमध्य सामान्य से ही कहेंगे उसको। वो तो बताया ना उन्होंने, उसमें तो प्रदेश पुंज की अपेक्षा असंख्यात गुणा है उसमें। देखो दो स्थिति विशेषों में, कौन से दो स्थिति विशेष? प्रथम स्थिति का अंतिम और द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेक। प्रदेश पुंज का क्या होता है? यवमध्य होता है, अनंतर कहा गया ने अभी अभी जो पहले पूर्वोक्त, क्योंकि अंतर के उभय पर्यंत भागों में यानी दोनों ओर की भागों में यवमध्य स्थूल होकर, क्या लिखा? स्थूल रूप से बताए ना, दोनों स्थिति विशेषों में क्रमानुसार प्रदेश पुंज की आगम के अविरोध पूर्वक हानि देखी जाती है।
ये पहली बार ऐसे देखा कि द्वितीय स्थिति में भी असंख्यात गुणा कर दिया जाता है, नहीं तो हमने जब भी गुण श्रेणी की
यहाँ नहीं यहाँ विशेषता है, यहाँ उसकी अभी आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं। अभी ये यहाँ तो असंख्यात गुणित है ना इसके, तो इसके बदले यहाँ बीच में और भी बड़ा समझ लो और इसकी अपेक्षा ये कम है और इसकी अपेक्षा ये, ऐसा भी इमेजिन कर सकते ना कि नहीं? वहां परंतु वो अंतर है और वो अंतर को इंक्लूड करना है, है ही नहीं है। यहाँ क्या लिखते देखो, क्योंकि अंतर के उभय पर्यंत भागों में यवमध्य स्थूल होकर दोनों स्थिति विशेषों में क्रमानुसार प्रदेश पुंज की आगम के अविरोध पूर्वक हानि देखी जाती है। अब इसी को स्पष्ट करेंगे शायद आगे बताएंगे, ये दोनों ओर हानि हो रही है, इधर से भी हानि हो रही है नीचे की ओर, इसलिए यहाँ स्थूल यवमध्य दोनों में उन्होंने इंक्लूड कर दिया। हाँ, इसको बताएंगे। अब इसी यवमध्य की रचना को स्पष्ट करने के लिए मूल गाथा के उत्तरार्ध का निर्देश किया गया है। पढ़माजम गुण सेड़ी, इस सूत्र का अर्थ है पढ़मा को क्या है, पढ़माजम गुण सेड़ी, पढ़माए पढ़माए पढ़मठी दिए, नहीं जब ने ऊपर देखो ना पढ़मा जम गुण सेढ़ी, त्याच्यापुढे लिखा है पढ़माए पढ़मठी दी, जम जम्मा गुण सेढ़ी गुण सेढ़ी सरुआ, जम को अलग निकाला है, पढ़माए चाहिए। हाँ, वो भाव हुआ है पढ़माए, ऊपर देखो पढ़मा जम गुण सेढ़ी लिखा। अभी ये पढ़मा जम और गुण सेढ़ी तीन शब्द है, उसमें पढ़मा ऐसे क्या समझना? प्रथम स्थिति समझना, जम यानी जम्मा, गुण सेढ़ी यानी गुण सेढ़ी स्वरूप, नीचे भी वही चाहिए पढ़माए।
पढ़
अर्थ है प्रथम स्थिति, वो बोलेगे ना पड़माए पड़मठी दी, मिला कहाँ ऊपर हमने देखा और हाँ देखो फिर पढ़ती हूँ पढ़माजम गुण सेड़ी, ये तीनों शब्द का मिलकर इस सूत्र का अर्थ है, पढ़माए का अर्थ है प्रथम स्थिति, अर्थ बरोबर का अथम हुआ, जम पद का अर्थ है जिसकी और गुण सेड़ी पद का अर्थ है गुण श्रेणी, पद यानी शब्द अर्थात प्रथम स्थिति गुण श्रेणी स्वरूप होकर अंतिम स्थिति में स्थूल हो गई है, गुण श्रेणी स्वरूप होकर
प्रथम स्थिति की अंतिम निषेक में स्थूल,
अंतिम निषेक में वो सबसे बड़ा हो गया, उत्तर श्रेणी विधिया दू अर्थात द्वितीय स्थिति यतः मूल में स्थूल होकर यानी स्टार्टिंग में बड़ी है आगे श्रेणी रूप से हीयमान होकर जाती है, श्रेणी रूप यानी प्रति पंक्ति घटती हुई चली जाती है, इस कारण इन दोनों स्थितियों की यानी प्रथम स्थिति के और द्वितीय स्थिति की अंतिम और प्रथम स्थिति के मध्य यानी पहले स्थिति का अंतिम निषेक और द्वितीय स्थिति का पहला निषेक इनमें शांतर होकर इसके मध्य में अंतर है, यह मध्य जान लेना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य विशेषार्थ। यहाँ पर कृष्टियों के वेदन काल के समय जिस समय जिस कृष्टि का वेदन करता है उस समय उसका प्रदेश विन्यास किस प्रकार का दिखाई देता है, प्रदेश विन्यास यानी प्रदेशों की रचना किस प्रकार से दिखाई देती है, दिखाईने की बात है ना, दिया जाता है नहीं पूछा, दिखाई देता है, इसी तथ्य का यहाँ स्पष्टीकरण किया गया है। ऐसा नियम है कि जिस कृष्टि का वेदन करता है उसकी अंतर सहित प्रथम और द्वितीय स्थिति होती है, प्रथम स्थिति उदय रूप निषेक से लेकर अंतर्मूर्त प्रमाण होती है, उसके बाद उस कृष्टि के अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक अंतर रूप होते हैं, अर्थात प्रथम स्थिति के अंतर्मूर्त काल प्रमाण निषेकों के ऊपर अंतर्मूर्त काल प्रमाण निषेकों का अभाव होता है जिसको हम अंतर कहेंगे, पुनः उसके बाद जितनी उस कृष्टि की स्थिति हो वहां तक, क्योंकि मुनि की जितनी स्थिति पड़ी है वहां तक द्वितीय स्थिति के निषेक अवस्थित रहते हैं, यह तो स्थिति की अपेक्षा विवक्षित कृष्टि के निषेकों की रचना का क्रम है, यानी निषेकों की अपेक्षा ये क्रम बताया है। अब विवक्षित कृष्टि के उदय के समय उस प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति में स्थित प्रदेश पुंज की रचना किस प्रकार दिखाई देती है, दृश्यमान की बात है, इसे स्पष्ट करते हुए वह यवमध्य के समान दिखाई देती है यह स्पष्ट किया है। यव बीच में स्थूल होकर दोनों ओर घटता हुआ होता है, ठीक इसी प्रकार विद्यमान कृष्टि भी प्रदेश पुंज की अपेक्षा प्रतीत होती है, शेष स्पष्टीकरण मूल में किया ही है।
आपने जो बताया बीच में,
हाँ बीच में उसको इमेजिन करो ना, वो तो यव मध्य सेंटर में ले लो या स्थूल रूप से इसको दोनों को यव मध्य को, कोई बात नहीं है। अब और विभाषा करेंगे, अब इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे के विभाषा ग्रंथ का अवतार करेंगे, ये तो अभी तो भाष्य गाथा हुई, अभी उसकी विभाषा करेंगे। विहासा, अब इस भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं, यह सूत्र सुगम है, जहां जैसे यह सूत्र सुगम है, अब ये सूत्र में उसका अर्थ बता रहे हैं, जम किट्टिम वेदयते वेदयदे तिससे उदय ठिदिये पदे सगम थोवम विधियाय ठिदिये पदे सगम असंख्यज्य गुणम एवं असंख्यज्य गुणम जाव पढ़म ठिदिये चरम ठिदित्ति। जिस कृष्टि का वेदन करता है उसकी उदय स्थिति में उदय रूप निषेक प्रदेश पुंज सबसे स्तोक होता है, सबसे कम, क्योंकि गुण श्रेणी है ना, वो उदय के समय से लेकर गुणित प्रमाण में दी हुई है। उससे दूसरी स्थिति में प्रदेश पुंज असंख्यात गुणा होता है। इस प्रकार प्रथम स्थिति संबंधी अंतिम स्थिति के प्राप्त होने तक प्रदेश पुंज उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा होता है। शंका, ऐसा किस कारण से है? समाधान, क्योंकि प्रथम स्थिति में उदयादि गुण श्रेणी, उदयादि आदि यानी उदय के समय से लेकर, उदयादि गुण श्रेणी का निक्षेप करके पृष्ठियों का वेदन करने वाले जीव के उसमें दिए जाने वाले और दिखने वाले प्रदेश पुंज के असंख्यात गुणे चाहिए। किम कारण ने ऊपर कुदो एवं चे विद्यमान सत्ता दिज्यमान दिश्यमान पदे सगम संख्यज गुण तमिण अवठान मोतन अन्य प्रकार संभव नहीं है।
वो
का लोक होता है वहाँ पर,
दो सा आ गया ना, वो भी सा है, चला गया वो
पदे सगस संख्यज गुण
आ गया। हाँ, इसलिए वहाँ का लोक हुआ और लिखने में अपन
यहाँ असंख्यात गुणे चाहिए। प्राकृत में ना कभी कभी वो लोक हो जाते हैं। क्योंकि ऊपर बता रहे हैं ना असंख्यात गुणा होता है, किस कारण? क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, दिखने वाला और दिया जाने वाला दोनों असंख्यात गुणा है। तदो विधि ठिदिये जा आदि ठिदी तिससे असंख्यात गुणा। उससे द्वितीय स्थिति की जो प्रथम स्थिति है, द्वितीय ने अंतर के ऊपर की बात हो रही थी, उसमें असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज का अवस्थान होता है। ऊपर पढ़ा था ना, तदो विधि ठिदिये जहाँ आदि ठिदी तिससे असंख्यज गुण। शंका, इसका क्या कारण है? उसका समाधान करेंगे। डेढ़ गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्धों के संख्यात आवलियों से भाजित करने पर वहाँ एक भाग प्रमाण लब्ध हुए द्रव्य का द्वितीय स्थिति की आदि स्थिति में अवस्थान होता है। इसलिए पूर्व के गुण श्रेणी शीर्ष संबंधी द्रव्य से यह पल्लोपम के असंख्यातवे भाग के प्रतिभाग रूप असंख्यात गुणा सिद्ध होकर स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। क्या समझे? कुछ नहीं। क्यों संख्या तावली से क्यों भाजित किया? स्थिति कितनी बाकी अभी? आठ वर्ष को ही संख्या तावली का आठ वर्ष इज इक्वल टू संख्या तावली, उसको संख्यात का भाग नहीं दिया। द्वितीय पूरी स्थिति कितनी पड़ी है?
संख्या तावली
जहाँ जहाँ गोपुच्छा का रचना होती है वहाँ वहाँ पहले निषेक का हम प्रमाण निकालते, कैसे निकालते हैं? पूरा सत्ता का द्रव्य पूरी डिवाइडेड बाय डेढ़ गुणहानि। अब यहाँ डेढ़ गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध, वो तो पूरा समय प्रबद्ध निकालने के लिए समय प्रबद्ध गुणा डेढ़ हानि करेंगे, गुणहानि समस्त द्रव्य है, ये पूरा समस्त द्रव्य है। अब ये समस्त द्रव्य इस पद्धति से यहाँ डिवाइड होगा, तो वो कैसा निकालेंगे? हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है? पहले में पहले डेढ़ गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध का अर्थ होता है टोटल द्रव्य। आप कहेंगे अभी तक तो इतना खिर गए ना, तो वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं के बराबर है। इसको हम असंख्यात गुना 12 कहते थे ना, यानी ये पूरा सत्ता का द्रव्य है। ये द्वितीय स्थिति में इतना पड़ा है, उसको संख्यात आवलियों से भाजित करने पर, अब उसको संख्यात आवलिय ने इतनी जो स्थिति पड़ी है उससे भाजित करने पर वहां एक भाग प्रमाण ये पहला द्रव्य आएगा। जितना द्रव्य है अभी, जितने समय उसके द्वितीय स्थिति के है, उस प्रमाण से उस संख्या तावलियों से भाजित करेंगे तो ये इस पहले निषेक का प्रमाण आएगा। इक्वल लेंगे तो भी वैसे तो उसमें और ज्यादा है। एवरेज निकाला होना, फिर भी उसमें कितना अनंत भाग कम होगा, जो कुछ होगा फिर भी राउंड अबाउट आप निकाल सकते हैं ना उसका प्रमाण। ये फिर पढ़ते, डेढ़ गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्धों के, यानी अपनी भाषा समय प्रबद्धों को, यानी उतने प्रदेश पुंज को संख्यात आवलियों से भाजित करने पर वहां एक भाग प्रमाण लब्ध हुए द्रव्य का, यानी इतना द्रव्य द्वितीय स्थिति की आदि स्थिति में उसका अवस्थान होता है, यानी वह पाया जाता है। चेलान छोटा करो या उसको जिससे भाग देना है उसमें ऐसे एडजस्ट करो ना, संख्या तावली एग्जैक्ट प्रमाण मत लो, इतना वहां मिलेगा हमें। हाँ, इसलिए पूर्व के गुणश्रेणी शीर्ष, ये पूर्व का गुणश्रेणी शीर्ष कहाँ पड़ा है लक्ष्मी बहन? पूर्व का इन्हें अभी भी बताया, ये जो नीचे का ये प्रथम स्थिति है उसका जो अंतिम निषेक है उसको गुणश्रेणी शीर्ष कहते, शीर्ष यानी माता उसका टॉप। कहीं कहीं एक निषेक को कहेंगे, कहीं कहीं अनेक निषेकों को, यहाँ तो एक निषेक को शीर्ष कहा है। यथा योग्य जहां जो बात आती है वहां वही समझेंगे। नीचे प्रथम स्थिति में गुणित प्रमाण में जो दिया था गुणश्रेणी बनी थी, उसका जो अपर मोस्ट निषेक है उसको गुणश्रेणी शीर्ष कहा। तो ये पूर्व गुणश्रेणी शीर्ष संबंधी द्रव्य से यह द्वितीय स्थिति का जो पहला निषेक है वह पहले स्थिति के अंत निषेक से दूसरे स्थिति का पहला निषेक पल्लोपम के असंख्यात वे भाग के प्रतिभाग रूप असंख्यात गुणा सिद्ध होगा। तो इससे ये कितने गुणा है? तो पल्ले के असंख्यात वे भाग गुणा है, कोने दो ना, आपको बहुत चिंता होती है। तो गुणश्रेणी रूप उसी गुणित में ऊपर चला गया है वो, उस जो नीचे जो गुणाकार था वैसा ही असंख्यात का गुणाकार लेके वहाँ ऊपर चला गया है वो, वहाँ उतना द्रव्य दिख रहा है।
तो पूर्व के गुणश्रेणी शीर्ष संबंधी बताया है, तो पूर्व के गुणश्रेणी शीर्ष तो अभी जो नया शीर्ष बना उसके अपेक्षा बात है,
अभी की बात, आगे कहाँ था? आगे तो नष्ट हो गया सब। अभी
गुण प्रमाण उसका भी बाकी है, जो आगे जो अपूर्व स्पर्धक था
उसमें कृष्टीय के स्पर्धक है,
स्पर्धक क्या अपूर्व?
अभी बात किसकी चल रही है? अभी इन्हें अभी बताया हुआ पूर्व का अर्थात क्या है, पहले की गुणश्रेणी की बात नहीं है, अभी जिस गुणश्रेणी की बात प्रथम स्थिति में बताई उसकी बात है। कहाँ पर? द्वितीय स्थिति में कहा, वो तो एक एक नष्ट होती, नई नई गुणश्रेणी बन रही है ना। कहाँ वो पहले अंतर किया तो सारे गुणश्रेणी वगैरह कहा? द्वितीय स्थिति में कहाँ शीर्ष था? गुणश्रेणी होगी तो प्रथम ही स्थिति में होगी, कभी भी द्वितीय स्थिति में होगी ही नहीं।
मैंने तो पूछा है कि पहले जो अंतर किया नीचे स्पर्धा तो नीचे अपूर्व स्पर्धा तो उसकी भी बोनस श्रेणी
वो भी गलित रूप थी
हा?
वो भी गलित रूप थी
गलित पर अभी कभी ये कभी तैयार हुई कभी एक आउटिंग पकड़ा उसके नीचे
उसको कौन सी स्पर्धक की कहेंगे कि गृष्टि की कहेंगे वही तो यहाँ बात किसकी चल रही है कृष्टि की ख्याल में यही बात और अपना विषय किस में चल रहा है इसमें और इसमें क्या अंतर है वो आवली वाले में क्या अंतर है उसकी बात ही नहीं हो रही है प्रथम स्थिति के अंत और निषेक और द्वितीय स्थिति के पहले निषेक इनका प्रपोर्शन देख रहे हैं
जो अंतर जो है ये अंतर ये वही अंतर ने जो अपन ने किया था अंतरकरण करके
हाँ बिल्कुल अंतरकरण करके किया था परंतु वो चेंज होता ही रहता है पहले वाली जो उच्चिष्ठावली रही तो अंतर बढ़ गया फिर नए परमाणु आकर फिर उसकी प्रथम स्थिति बनी यथायोग्य वो अंतर कम ज्यादा होता रहता है और पहली जो गुणश्रेणी बनी वो गलित रूप से निकल गई है सारी अब आगे यानी वो उससे असंख्यात गुणा इतनी बात उन्होंने सिद्ध कर दी गणित के द्वारा तदो सवत्थ विशेष हीन उस द्वितीय स्थिति की प्रथम स्थिति संबंधी द्रव्य से आगे सर्वत्र प्रदेश पुंज उत्तरोत्तर विशेष हीन होता है ये तो बात जाहिर है ना अभी ऊपर तो एक एक चय घटते हुए दिया है तो विशेषहीन बताया तदो अर्थात द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक से ऊपर सर्वत्र द्वितीय स्थिति के अंतिम निषेक के प्राप्त होने तक एक एक गोपुच्छा विशेष की हानि होने से गोपुच्छा विशेष निश्चय उस रूप से दिखने वाले प्रदेश पुंज का अवस्थान होता है यह दृश्यमान द्रव्य इसे ही दिखेगा अन्य प्रकार से नहीं होता यह उक्त कथन का तात्पर्य है तथा इसी प्रकार दीयमान प्रदेश पुंज की भी श्रेणी प्ररूपणा करनी चाहिए दीयमान यानी दिया जाने वाला इतनी विशेषता है ये डिफरेंस तो कुछ है ही तो क्या विशेषता है कि द्वितीय स्थिति में विशेषहीन प्रदेश पुंज का सिंचन करता हुआ द्वितीय स्थिति के अग्र स्थिति में एक समय अधिक एक आवली प्रमाण निषेक शेष रहने के पूर्व तक सिंचन करता है क्योंकि उससे आगे अति स्थापनावली के भीतर दीयमान प्रदेश पुंज की संभावना नहीं पाई जाती दीयमान यानी दिया जाने वाला कहां से दिया जाएगा इन्हीं निषेकों में से सर्वत्र से नीचे आता है उसी में दिया जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सबसे ऊपर की जो स्थिति थी उसका हर एक का आकर्षण हो रहा है परंतु टॉप मोस्ट हम देखेंगे इसका द्रव्य कहाँ कहाँ जाएगा तो ये एक है और उसके मान लेते हैं उसके नीचे आवली का प्रमाण चार है तो चार छोड़कर नीचे से सर्वत्र उसका द्रव्य दिया जाएगा तो इतने निषेकों में ऊपर से कहीं से भी द्रव्य आने वाला नहीं है कितने निषेकों में आवली प्लस एक समय इतने ऊपर के निषेकों में ऊपर से कहीं से द्रव्य आने वाला इन्हें दिया जाने वाला नहीं है इसमें से जाएगा इसमें आएगा नहीं तो दिया जाने वाला द्रव्य इसमें नहीं दिखाएंगे दिया जाने वाला द्रव्य तो ऐसा दिखाएंगे ये दिया गया द्रव्य साइड से ये अति स्थापनावली में नहीं दिया नीचे सर्वत्र दिया ख्याल में पर दृश्यमान की तो एक गोपुच्छा होगी इसी तरह से दिया जाएगा कि वो दृश्यमान की पूर्ण एक गोपुच्छा दिखेगी अभी सीधी कांड के यथायोग्य वो
हाँ लेकिन दृश्यमान ऊपर की चूड़ी का बन जाएगी जहाँ पर अतिस्थापना वाले निषेक है
हाँ
तो चूड़ी का रूप बन जाएगी
हाँ वैसे वो अलग ही दिखाते हैं हमेशा उसको अलग दिखाते हैं देखो विशेष आगे यह प्रत्येक कृष्टि का वेदन करते समय उसमें दीयमान और दृश्यमान प्रदेश पुंज की अपेक्षा किस प्रकार यवमध्य बनता है इसे स्पष्ट किया गया है। वेद्यमान कृष्टि की द्वितीय स्थिति में स्थित जो अंतिम निषेक है उसमें से प्रत्येक समय में अपकर्षण के योग्य प्रदेश पुंज की अपेक्षा द्वितीय स्थिति में से एक समय कम किया गया। किसकी अपेक्षा? अंतिम निषेक में से जो द्रव्य अपकर्षित हो गया जिसमें से होने वाला, इसलिए वो एक समय कम कर दिया और उसके जो नीचे एक आवली तो अतिस्थापना कम करेंगे और उसके नीचे एक आवली प्रमाण निषेकों को अतिस्थापनावली में रखा गया। अतिस्थापनावली, अतिस्थापना किसको कहते हैं? जिसमें नहीं दिया जाता है उसको अतिस्थापना कहेंगे। वो आवली प्रमाण है इसलिए अतिस्थापनावली कहा यहाँ पर। इस प्रकार एक स्थिति कांडक के पतन होने तक अंतिम निषेक में से क्या बताया? केवल अंतिम निषेक नहीं, एक स्थिति कांडक के पतन होने तक। देखो अब इतनी वो सत्ता के निषेक पड़े हैं, उसमें से तो अपकर्षण हर समय चल ही रहा है। अब उसने इतना कांडक रूप से ग्रहण किया तो प्रथम समय में भी नीचे आएंगे, द्वितीय समय में, तृतीय समय में, पर जब तक अंतिम फाली नहीं कीर्ती तब तक यहाँ का माल यहाँ भी दिया जाएगा और नीचे भी दिया जाएगा, मात्र अति स्थापनावली छूटेगी। और जब पूरा कांडक नीचे आता है तो ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। ये केवल एक अंतिम निषेक की बात बता रहे हैं, अंतिम फाली तक की बात है। क्या कहते हैं?
तो उस समय अति स्थापना छोड़ेंगे, मतलब
इसके देखो ये पूरा कांडक है, अंतिम निषेक का द्रव्य उसके नीचे चला जाएगा, परंतु इसकी अति स्थापना जिसको हमने कांडक रूप से ग्रहण किया है नीचे लोअर मोस्ट कांडक का लोअर मोस्ट निषेक, उसके लिए अति स्थापना कहेंगे उसके लिए, परंतु इसमें अन्यत्र से तो माल आ ही रहे हैं, वो सर्वथा अति स्थापना नहीं है। उतने कांडक के जो नीचे निषेक है उसमें टॉप मोस्ट में से तो उसमें माल आ ही रहा है, उसका निषेध नहीं है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं आता ऐसा नहीं कहेंगे, आ रहा है। मात्र ऊपर के जो है अंतिम निषेक का जो द्रव्य वो अपने नीचे आवली छोड़कर नीचे सर्वत्र दिया जाएगा। उन निषेकों में आवली और एक समय, इतने निषेकों में कोई आय नहीं है, व्यय है, इनकम नहीं है उनके कुछ, उसको आय द्रव्य कहा है। जो आता है वो आय द्रव्य और जो जाता है वो व्यय द्रव्य, उसमें से व्यय होगा आय नहीं होगी। यहाँ क्या लिखा है? एक स्थिति कांडक के पतन होने तक, आपका ये प्रश्न पहले था ना, स्थिति कांडक होता है कि नहीं होता है, अंतिम निषेक में से प्रति समय विवक्षित प्रदेश पुंज का अपकर्षण होने पर उसका उदय निषेक से लेकर प्रथम और द्वितीय स्थिति में उपरीतन एक निषेक अधिक एक आवली प्रमाण निषेकों को छोड़कर अंतर के अतिरिक्त शेष स्थिति सत्व के सब निषेकों में यथाविधि निक्षेप होता है। ओ, क्या कहा उन्होंने? ये द्वितीय स्थिति के मात्र अंतिम निषेक के परमाणुओं की बात चल रही थी। इसका परमाणु का द्रव्य कहाँ कहाँ दिया जाएगा, इसके नीचे आवली छोड़कर उदय के समय से, ये नीचे प्रथम स्थिति है तो उदय के समय से लेकर पूरी प्रथम स्थिति में और द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक से लेकर इसके नीचे आवली छोड़कर सर्वत्र दिया जाएगा। अंतर में तो देते नहीं है, ये ख्याल में ही बात। यथाविधि ने जैसे बताया था ना कैसा दिया जाता है, यह अंतिम निषेक में से प्रदेश पुंज के अपकर्षण की अपेक्षा कथन है, मात्र अंतिम निषेक की अपेक्षा ये बात है। इसी प्रकार उपान के आदि निषेकों की अपेक्षा भी अपकर्षण के नियम को ध्यान में रखकर, अपकर्षण का नियम क्या है, अपने अपने नीचे अति स्थापना अवली प्रमाण छोड़नी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि विवक्षित जिस निषेक में से प्रदेश पुंज का अपकर्षण इष्ट हो उसे और उससे नीचे, उसको तो छोड़ना ही छोड़ना, उसके नीचे एक अवली प्रमाण निषेकों को छोड़कर शेष सत्व स्थिति में अपकर्षित प्रदेश पुंज का निक्षेप होता है, ऐसा यहां समझना चाहिए। यतः इस प्रकार प्रथम और द्वितीय स्थिति में प्रदेश पुंज के क्रम वृद्धि और क्रम हानि रूप से अवस्थान का नियम है। हमने कहा नया क्रम से वृद्धि है, फिर क्रम से हानि है। अतः प्रथम और द्वितीय स्थिति संबंधी प्रदेश पुंज में यह यवमध्य घटित हो जाता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। जवमध्यम पणमठिदीय चरिमठिदीय च विदीयठिदीय आदिठिदीय च, प्रथम स्थिति के अंतिम स्थिति में यानी अंतिम निषेक में, बार बार स्थिति शब्द आने से कन्फ्यूजन हो रहा है ना, यानी प्रथम स्थिति के जो अंतिम निषेक में और द्वितीय स्थिति की आदि स्थिति में यानी आदि निषेक में, प्रथम निषेक में यह यवमध्य होता है। शंका, इसका क्या कारण है? समाधान, क्योंकि इन दोनों स्थिति विशेषों को क्रमशः नीचे से और ऊपर से देखने पर प्रदेश पुंज का स्थूल रूप से अवस्थान देखा जाता है, यानी वहां प्रदेश पुंज अधिक है। ये नीचे पहली स्थिति में इसमें सर्वाधिक है, नीचे घटता जाता है, ऊपर भी यहां सर्वाधिक है, ऊपर घटता जाता है। अब इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपसंहार वाक्य को कहते हैं। एदम तम यवमध्यम सांतरम दुसुठिदिशु, वह यह यवमध्य दोनों स्थितियों में सांतर होता है, यानी वह अंतर सहित है। गाथा सूत्र में जो यवमध्य यव हुआ है, यवमध्य दोनों स्थितियों में सांतर कहा है, वह यह है, ऐसा अवधारण करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इसी का विशेषांक, अंतर के पूर्व यानी नीचे प्रथम स्थिति में उदयादि गुणश्रेणी रूप निक्षेप होने से उसका अंतिम निषेक नीचे से देखने पर प्रदेश पुंज की अपेक्षा स्थूल होता है। इसी प्रकार अंतर के ऊपर द्वितीय स्थिति में प्रथम निषेक ऊपर से देखने पर यह भी प्रदेश पुंज की अपेक्षा स्थूल होता है, ऊपर की अपेक्षा यह बढ़ता चला गया यहां तक, नीचे से देखने पर यह यहां तक बढ़ता चला गया। इस प्रकार दोनों ओर से निषेक सन्निवेश के देखने पर वह मध्य में यवक के मध्य भाग के समान, ये यवक नहीं है, यवक के मध्य भाग के समान स्थूल दिखाई देता है, इसीलिए इसे यवमध्य शब्द द्वारा अभिहित किया गया, यानी बताया गया, संबोधित किया। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा द्वितीय भाष्य गाथा की अर्थ विभाषा करके, अर्थ और विभाषा, अब तृतीय भाष्य गाथा की अवसर प्राप्त अर्थ विभाषा करते हुए उसका अवसर करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। एतो तदीयाय भाषगाहाय समुत्कीर्तना, अब इससे आगे तीसरे भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना करते हैं। यह सूत्र सुगम है। विधियट्ठिदियादिपदा शुद्धं पुनहोदि उत्तरपदं तु शेषो असंख्ये जदिमो भागो तिस्से पदे सज्ञे। द्वितीय स्थिति के प्रथम प्रमत हुआ, प्रथम द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में से अंतिम निषेक को घटावे, ऐसा करने पर द्वितीय स्थिति के प्रदेश द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक संबंधी प्रदेश पुंज में शुद्ध शेष असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है। क्या कहा, किसमें से क्या घटाना है?
प्रथम निषेक में से अंतिम निषेक को घटाना।
ये प्रथम निषेक, अंतिम कौन सा? लास्ट वाला, ऊपर वाला। हाँ, नौ, पांच सौ वाले से नौ। तो कितना रहेगा, तो कितने चय घटे, तो जितने यहाँ निषेक है उसमें से एक कम करो, इतने चय घटे, इतना घटाएंगे तो ये इसके समान हो जाएगा ना, तो इसका शुद्ध शेष जो घटाया है वो शुद्ध शेष, यानी पहले निषेक के प्रदेश माइनस लास्ट निषेक के प्रदेश, द्वितीय स्थिति की बात है, जो वहां रहेगा उसको शुद्ध शेष कहेंगे। फिर से इसको देखेंगे, शुद्ध शेष करते हैं उसकी, उसका बाकी कितना रहे, चय धन नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ चय, टोटल नंबर ऑफ चय, चय धन नहीं कह सकते
उसका।
इतने चय घटाए हमने, एक चय, दो चय, तीन चय, कितने घटाए, मान लेते दस निषेक होते तो पहले से दसवां कितना घट गया, तो नौ बार घटाए, तो नौ चय माइनस करेंगे, चय धन किसको कहेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री, नौ का संकलन धन, वो नहीं, वो नहीं। देखो, द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में से हिंदी पर नीचे अंतिम निषेक को घटावे, द्वितीय स्थिति में ही है पहला और अंतिम निषेक, ऐसा करने पर द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक संबंधी प्रदेश कुंज में शुद्ध शेष असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है। यानी वो पहला निषेक और लास्ट निषेक, तो इसमें से कितना घटा, तो कहते असंख्यातवे भाग घटा, यह तीसरी भाष्यगाथा। द्वितीय स्थिति में स्थित उत्तर श्रेणी संबंधी प्रदेश कुंज की परम्परोपनिधा की प्ररूपणा के लिए अवतीर्ण हुई है। द्वितीय स्थिति में पहला और लास्ट निषेक इनकी कंपैरिजन की, प्रदेश पुंज की अपेक्षा कितना है, तो डायरेक्ट कंपेयर की तो उसको परम्परोपनिधा कहा। वह जैसे विधियट्ठिदि आदि पदा, ऐसा कहने पर द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में से यह उक्त कथन का तात्पर्य है। पडियता अर्थात विभक्ति का लोप करके गाथा सूत्र में विधियट्ठिदि आदि पदा इस प्रकार निर्देश किया गया है। शुद्धम पुनः उत्तर पदम हो दिया, ऐसा कहने पर उस द्वितीय स्थिति का उत्तर पद अर्थात द्वितीय स्थिति के अंतिम निषेक का प्रदेश पुंज ग्रहण करना चाहिए, उसे शुद्ध अर्थात शोधित करना चाहिए। यानी पहले निषेक में से उसका माल, उसका प्रमाण घटाना चाहिए। इस प्रकार शोधित करने पर शेषो असंख्य जदम्यो भागो शुद्ध शेष तिससे, यानी द्वितीय संबंधी प्रथम स्थिति के प्रदेश पुंज का असंख्यात्वा भाग होता है। द्वितीय स्थिति संबंधी आदि स्थिति के असंख्यात भाग करने पर उनमें से एक भाग मात्र ही शुद्ध शेष द्रव्य का प्रमाण होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी इतना शुद्ध शेष उसमें कम करो तो अंतिम निषेक का प्रमाण मिल जाएगा। शंका, यह किस कारण से प्राप्त होता है? उसका समाधान, क्योंकि गोपुच्छ विशेषों का यहाँ पर अधिकपना देखा जाता है। पृष्ठियों में देखा था तो अनंतवा भाग था वो, और अनंत पृष्ठी जाने पर भी अनंतवा ही भाग शुद्ध शेष था। यहाँ असंख्या तो अभाव, क्योंकि निषेकों की बात है। अब कितने निषेक बचे है? थोड़े ही है। जैसे संख्यातावली प्रमाण निषेक है तो उसमें बहुत प्रदेश पुंज है, तो उसका चय का प्रमाण भी बड़ा होगा असंख्यात बाबा। जब हमने कृष्टियों में देखा, कृष्टियों में तो अनंत होते हैं, तो उसमें अनंत वा भाग चय का प्रमाण था। एक पृष्ठी में जितना प्रदेश पुंज था उससे अनंत वे भाग उसमें तो प्रदेश पुंज जो है उसकी अपेक्षा से बात की, कृष्टि के प्रदेश पुंज। यहाँ निषेकों की बात हो रही है। इस प्रकार यानी कि ना गोपुच्छ विशेषों का यहाँ पर अधिकपना देखा जाता है। नहीं, गोपुच्छ विशेष यानी चय यहाँ बड़ा है। इस प्रकार यह परम्परोपनिधा द्वितीय स्थिति के प्रदेश कुंज के विषय में कही गई है। अनंत रोपनिधा चाहिए, बीच में प नहीं चाहिए। अनंत परोपनिधा नहीं होता है, अनंत रोपनिधा होता है। अनंत रोपनिधा ऊपर भी ना, अनंत रोपनिधा अनंत रोपनिधा भी इसी से सूचित की गई है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अनंत रोपनिधा क्या है? एक एक चय घटता है, वो चय कितना है तो असंख्यात्वा भाग है। अब इस गाथा के इस प्रकार के अर्थ की विभाषा करते हुए आगे के विभाषा ग्रंथ को कहते हैं विहासा। अब इस भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है। विधियाय ठिदिये उपकस्याय पदे सगम तिस्से चेव जहन्याय ठिदिदो शुद्धम शुद्ध शेषम पलिदो नस असंख्ये यदि भाग परिभागियम। द्वितीय स्थिति संबंधी उत्कृष्ट स्थिति के प्रदेश कुंज को, उत्कृष्ट स्थिति पहली है ना, उत्कृष्ट स्थिति यानी प्रथम, उसी की जघन्य स्थिति में से घटावे। नहीं नहीं, ये प्रथम स्थिति, जघन्य यानी प्रथम स्थिति, उत्कृष्ट यानी अंतिम, जिसको अग्र स्थिति कहेंगे। उत्कृष्ट स्थिति के प्रदेश कुंज को जघन्य स्थिति में से घटाना है, ऊपर के निषेक को नीचे के निषेक में से घटाना है। घटाने पर नहीं, नहीं प्रथम स्थिति में नहीं, इसको इसमें से घटाना है। पहले हुआ है ना, वही उसी की विभाषा फिर दोबारा बता। घटाने पर शुद्ध शेष का प्रमाण पल्लोपम के असंख्यात भाग का प्रतिभागी होता है। वही है, उसी की विभाषा है। पहले भाषा गाथा की बात की, अब उसके विभाषा रूप से वही बात बता रहे। यहाँ पर शुद्ध शेषम पलिदोमस असंख्य भाग परिभागी ऐसा कहने पर संख्यात आवलियों से भाजित निषेक भागहार के द्वारा द्वितीय संबंधी प्रथम निषेक के भाजित करने पर वहां एक भाग प्रमाण शुद्ध शेष द्रव्य होता है। ऐसा ग्रहण करना चाहिए।
प्रथम आवलियों से भाजित संख्या आवलियों से भाजित निषेक भागार।
निषेक भागार किसको कहते हैं?
दो
गुणहानि को कहते हैं।
गुणहानि है, निषेक गुणहानि पड़ी है।
गुणहानि गुणहानि जो होती है, हमेशा जो होती है उसका प्रमाण लेना है। तो दो गुणहानि जो है निषेक भागहार, उसको संख्यातावली से भाग देना और उसका भाग प्रथम निषेक को देना। हाँ, पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण गुण होती है, उसी संख्यातावली से भाग देंगे। हाँ,
दूसरे प्रथम निषेक को
भाग देंगे तो एक भाग प्रमाण शुद्ध शेष द्रव्य मिलेगा। शुद्ध शेष, शुद्ध शेष इसका भावार्थ देखो, ये सारा विस्तार से समझा रहे। द्वितीय स्थिति का आयाम यथा वर्ष पृथक को प्रमाण है। अभी हमने देखा था ना अलग अलग जिसका वेदन चलेगा आठ वर्ष है या जो कुछ यथा योग्य है चार वर्ष, तो उसको वर्ष पृथक को कहा कुछ वर्ष। इसलिए उसके अंतिम निषेक संबंधी प्रदेश कुंज से प्रथम निषेक संबंधी प्रदेश पिंड संख्यात गुणा असंख्यात गुणा या दूसरे रूप न होकर नियम से असंख्यात वे भाग अधिक ही होता है, क्योंकि ऊपर से लेकर अनंत रूप निधा की अपेक्षा एक एक गोपुच्छ विशेष मात्र बढ़कर प्राप्त हुआ प्रदेश पुंज विवक्षित स्थिति में पल्लोपम के असंख्यात वे भाग के प्रतिभागीपन को छोड़कर अन्य प्रकार संभव नहीं है। यानी एक गोपुच्छा दो, एक विशेष एक चय दो चय तीन चय, तो जितने ऊपर अभी संख्यातावली प्रमाण ऊपर निषेक है उसमें एक कम करो, इतने बार चय हुआ उसका टोटल चयों का प्रमाण, चय धन नहीं, इतने नंबर ऑफ चय ऊपर से देख रहे तो बढ़ेंगे, तो पहले निषेक में इतना शुद्ध शेष द्रव्य ज्यादा होगा। तो कहते वो कितना होता है तो असंख्यात भाग होगा, तो इसको कहते पल्ले के असंख्यात भाग का प्रतिभागी है वो, इसका विशेषार्थ। और देखो द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में जितना प्रदेश पुंज प्राप्त होता है उससे उसके दूसरे निषेक में एक विशेष मात्र द्रव्य कम होता है, द्रव्य हुआ है, द्रव्य कम होता है यानी एक चय से घटता है ना। इसी प्रकार आगे आगे प्रत्येक निषेक में एक एक विशेष मात्र द्रव्य कम होता जाता है। यहाँ द्वितीय स्थिति का स्थिति सत्कर्म वर्ष पृथक प्रमाण है, उसमें एक आवली प्रमाण काल का भाग देने पर संख्यात आवलिया प्राप्त होती है। यानी ये टोटल काल कितना है तो संख्यात आवली, क्योंकि हमने उसको आवली प्रमाण से किया, इसीलिए यहाँ पर संख्यात आवलियों से निषेक भागहार को भाजित करने पर प्राप्त हुए लब्ध एक भाग से यानी जो वैल्यू आ गई उस एक भाग से द्वितीय स्थिति के प्रदेश कुंज को भाजित करने पर जो एक भाग लब्ध आया उतना द्वितीय स्थिति के अंतिम निषेक के प्रदेश कुंज से उसी के प्रथम निषेक के प्रदेश कुंज में अधिक द्रव्य का प्रमाण होता है। कितना अधिक है तो निषेक भागहार को वो संख्या तावली से भाग दिया और उस संख्या से द्वितीय स्थिति के पूरे प्रदेश कुंज को भाग दिया ना। किसको
निषेक भागहार हमारा पहले था संख्या को भाग दिया और निषेक यहाँ पे जो स्थिति की संख्या है वो संख्या तावली तो और असंख्या को संख्या से भाग देगा तो असंख्या दे
क्या 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 फिर से
निषेक भागहार हमारा पहले था संख्या का भाग और यहाँ पे स्थिति की संख्या संख्या तावली तो लेकर संख्या को भाग को संख्या तावली से भाग दी गई तो असंख्या किया गया ना।
आप संख्या से भाग देंगे
तो संख्या
संख्यात संख्या क्यों से भाग है, संख्या तावली है, आवली को क्यों भूल रहे, आवली इटसेल्फ असंख्या है। हम कहते हैं ना पावली हो गए आवली हो गए ये अधिक द्रव्य का प्रमाण कितना है उसकी बात निकाली। इस प्रकार परंपरोप निधा की अपेक्षा देखने पर डायरेक्ट उन्होंने पहले निषेक के लास्ट निषेक की कंपैरिजन की ना, तो परम परोप निधा द्वितीय स्थिति के अंतिम निषेक के द्रव्य से उसी के प्रथम निषेक का द्रव्य असंख्यातवा भाग अधिक होता है, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार तीसरी भाष्य गाथा की विभाषा समाप्त करके अब यथा अवसर प्राप्त चौथी भाष्य गाथा का अवतार करते हुए इस सूत्र को कहते हैं। एतो चौथी भाषगाहाय समुत्कीर्तना, यह चौथी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना है। यह सूत्र सुगम है। तम जहा, वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। अब गाथा बताएंगे। उदयादि आठि दियो निरंतरं तासु होइ गुणसेढ़ी, उदयादि पदे सगम गुणेन गणनादियन्तेन। उदय से लेकर प्रथम स्थिति संबंधी जितनी स्थितियां हैं उनमें निरंतर रूप से गुण श्रेणी होती है। निरंतर यानी प्रति निषेक गुणित प्रमाण में रचना होती है। उसकी अपेक्षा एक एक स्थिति में यानी एक एक निषेक में उदय से लेकर यानी उदय रूप निषेक से लेकर असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से प्रदेश पुंज दिया जाता है। तो पहले भी बताया था उदय आदि गुण श्रेणी होती है और असंख्यात गुणा क्रम से यहाँ प्रदेश दिया जाता है। यह चौथी भाष्य गाथा पूर्वोक्त यव मध्य के सन्निवेश को ही स्पष्ट करने के लिए प्रथम स्थिति में प्रदेश पुंज का अवस्थान इस क्रम से होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए अवतीर्ण हुई है, क्योंकि इसमें सुस्पष्ट रूप से ही उस प्रकार का अर्थ प्रतिबद्ध देखा जाता है। प्रकृत में पूर्वार्ध का पद संबंध इस प्रकार करना चाहिए, यानी गाथा का जो पूर्वार्ध है उदयादि वगैरह जो बताया है, तो उदयादि यानी उदय से लेकर प्रथम स्थिति संबंधी जो स्थितियां हैं उनमें निरंतर रूप से गुण श्रेणी होती है। निरंतर रूप से ने प्रति निषेक में गुणित प्रमाण में दिया जाता है, बीच में कोई अंतर नहीं छूटा है। इस प्रकार इसी अर्थ के स्पष्ट करने के लिए गाथा का उत्तरार्ध अवतीर्ण हुआ है। प्रकृत में पद संबंध इस प्रकार है कि उदय से लेकर जो प्रदेश पुंज दिखाई दिया जाता है या दिखाई देता है, दोनों ही ना, क्योंकि वहां था ही नहीं, दिया गया वही दिखाई दिया है। तो उदय से लेकर जो प्रदेश पुंज दिया जाता है या दिखाई देता है वह गुणकार की अपेक्षा असंख्यात गुणित जानना चाहिए। वहां असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से प्रदेश पुंज का अवस्थान अवधारित करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य यानी जानना चाहिए। प्रदेश पुंज कैसे दिया जाता है और वैसे दिखाई भी देगा, यहाँ ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि पढ़माजम गुण श्रेणी ऐसा कथन करते हुए कषाय प्रावृतकार ने दूसरी भाष्य गाथा द्वारा ही इस अर्थ विशेष का ज्ञान करा दिया है। इसलिए पुनरुक्त इस गाथा के निर्देश करने से क्या प्रयोजन है, क्योंकि उक्त दूसरी भाष्य गाथा में सूचना मात्र रूप से निर्दिष्ट किए गए गुण श्रेणी निर्देश का इस भाष्य गाथा में विशेष रूप से प्ररूपणा करने पर पुनरुक्त दोष का अवतार नहीं होता। पहले में पहले प्रदेश पुंज संबंधी गाथाएं आई थी, कहां कैसा प्रदेश होता है, तो वहां पहले स्थिति में गुणित प्रमाण में गुण श्रेणी रूप से बताया था, परंतु यहां उसकी और डिटेल्स बताई है, इसलिए पुनरुक्त नहीं है। अब इस भाष्य गाथा के अर्थ की विभाषा करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। विहासा क्या हुआ, सूत्र नंबर 126 है, 135। पहले हमने क्या किया था, 134। 122 किया था, 88 89 पर हमने 132 का 122 किया था, क्योंकि 88 पृष्ठ पर 121 था और निवासी पर 132 था, उसको 122 किया था हमने 93 पर, 133 है वहां, 123 करना था। हाँ हिंदी में 122 था, 89 पेज पर। 93 में क्या लिखा है, 133 लिखा है, 124 कहाँ आया, 98 पर, 124 हिंदी और प्राकृत दोनों में। एक सौ दो और ये 136 के बदले 126। आगे देखेंगे अभी। अब कहते विहासा, अब इस भाषा गाथा की विभाषा करते, यह सूत्र सुगम है। उदय ठिदि पदे सगम थोगम, उदय स्थिति में प्रदेश पुंज थोड़ा है, यह सूत्र सुगम है। विधियाय ठिदे पदे सगम असंख्यज्य गुण, असंख्यज्य हुआ है, असंख्यज्य गुण खे करना उसका, उससे दूसरी स्थिति में प्रदेश पुंज असंख्यात गुणा है। शंका, गुणकार क्या है, पल्लवों का असंख्यात वा भाग गुणकार है। एवं सव्विस से पढ़मठिदिये, इस प्रकार संपूर्ण प्रथम स्थिति में जानना चाहिए। शंका, इसका क्या कारण है। समाधान, क्योंकि उदयादि गुणश्रेणी रूप से अवस्थित, अवस्थित नहीं यहाँ जो पाया जाता है, प्रथम स्थिति संबंधी निषेकों में असंख्यात गुणेपन को छोड़कर अन्य प्रकार संभव नहीं है। ये गुणश्रेणी रूप से अवस्थित कहा है, इसको अवस्थित गुणश्रेणी नहीं कहा है, उल्टा नहीं करना इसको। अवस्थित गुणश्रेणी यानी एक एक निषेक जाएगा और ऊपर का एक एक आएगा, उसकी बात नहीं है, ये तो गलित शेष गुणश्रेणी है। नहीं नहीं, प्रत्येक समय में नीचे है, नीचे उसमें कुछ निषेक बढ़ेंगे नहीं, उतने ही निषेक में एक एक निषेक घट जाएगा और उसमें असंख्यात गुण आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो तो सारी प्रथम दृष्टि नष्ट होनी है, उसका माल द्वितीय रूप से भी जाएगा, नीचे भी आकर निकल जाएगा, वो तो चल ही रहा है और नीचे अपकर्षण नष्ट भी हो रहा है, उदय में भी आ रहा है। इस प्रकार इस भाष्य गाथा की विभाषा समाप्त करके अब पांचवी गाथा की समुत्कीर्तना करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। इत्तो पंचमीय भाषगाहाय समुत्कीर्तना, अब आगे पांचवी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना करते हैं। यह सूत्र सुगम है, तम जहा वह जैसे, यह सूत्र सुगम है, यहाँ 127 नंबर बराबर आया है। उदयादि सुठिदीसु य जंकमम नियम सागतम हरसम पविसदिठिदिखेन दो गुणेन गणनादि अंतेन। एक कर्म हुआ है ना, जम कर्मम, जम कम्मम चाहिए, ऊपर बिंदी चाहिए। उदयादि सुठिदीसु य जम कम्मम, देखो उसका अर्थ पढ़ते, उदय से लेकर प्रथम स्थिति की अवांतर स्थितियों में, यानी उसके जो निषेक है टोटल, उदय स्थिति में जो कर्म द्रव्य उपलब्ध होता है वह नियम से अल्पतर होता है तथा उदय स्थिति के क्षय होने से उपरिम अनंतर स्थिति का असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से कर्म द्रव्य उदय में प्रवेश करता है। क्योंकि गुणित श्रेणी रूप से दिया था ना, जब पहला एक समय का निषेक उदय रूप होकर फिर गया, अब दूसरे का नंबर आया तो उसमें द्रव्य कितना है, तो असंख्यात गुणा है। यह पांचवी भाष्य गाथा प्रथम स्थिति संबंधी प्रदेश पुंज को आधार करके वहां समय समय में विद्यमान प्रदेश पुंज के अल्पभूतों का करने के लिए कथन करने के लिए अवतीर्ण हुए। अभी यहाँ उदय की बात चल रही है, पहले समय में जितना उदय हुआ दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा होगा, और यह अर्थ पिछली भाष्य गाथा में ही कह आए हैं, इसलिए निरर्थक है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस भाष्य गाथा में पहले नहीं कहे गए उदय विशेषण सहित प्रत्येक समय में उदय में प्रवेश करने वाले प्रदेश पुंज के अल्पभूत्व के प्ररूपण करने में यह गाथा प्रतिबद्ध देखी जाती है। अब इसका अर्थ कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे नो खारो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।